तभी नैना का भाई नैना के पास आया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, छोटी तुम घर के अंदर जाओ और जाकर शादी की तैयारी करो। और उसके बाद वो राजवीर को उंगली दिखाते हुए बोला था, जो कहा है उसका ध्यान रखना और घर के आसपास भी नजर मत आना, वरना तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तभी अचानक राजवीर हंसने लगा था और थोड़ा रुककर नैना के भाई को देखते हुए बोला था, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर तुम मुझे इसी तरह अपने रास्ते पर जाने देते तो शायद जिंदा रहते, लेकिन अब देखना क्या होगा, तैयार रहना। ये कहकर राजवीर वहां से चला गया था। वहीं उसके भाई को उसका इस तरह जाना कुछ अजीब सा लगा था, लेकिन फिलहाल उसके लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि उसकी बहन अभी भी घर पर ही थी। अब बस किसी भी तरीके से एक हफ्ते के अंदर अंदर वो राजवीर का पूरा सच नैना को दिखाना चाहता था, ताकि उसके दिल और आंखों पर पड़े उसके झूठे प्यार का पर्दा हट जाए। उधर राजवीर गुस्से से तिलमिलाता हुआ अपने कमरे में चीजें पटक पटक कर तोड़ रहा था। ये वही कमरा था जहां उसने खुद को जख्मी किया था, क्योंकि उसके आदमियों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे उस पर हाथ उठाते, इसलिए उसने खुद ही अपने शरीर पर सारे घाव बनाए थे। वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोला, आज की रात मुझे नैना माथुर के साथ बितानी थी, लेकिन उसके भाइयों ने सब खराब कर दिया। लगता है अब मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। कुछ सोचकर वो अचानक अपने लैब में चला गया और एक रहस्यमयी इंजेक्शन तैयार करने के लिए एक्सपेरिमेंट करने लगा। वो लगातार 16 घंटे तक उस पर काम करता रहा। 16 घंटे तक लगातार काम करने की वजह से राजवीर की हालत काफी खराब हो चुकी थी और फिर वो लगातार पूरे 8 घंटे तक सोता रहा। इसी चक्कर में नैना माथुर, जो कि दुल्हन बनकर पूरा दिन उसका इंतजार कर रही थी, वो पूरी तरह से गुस्से से भर चुकी थी। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि राजवीर उसे धोखा दे जाएगा और अभी तक वो उससे शादी करने के लिए नहीं आएगा। वहीं उसके भाई ने मन ही मन में संतोष जाहिर किया था कि कम से कम उन्होंने अपनी बहन को सनकी राजवीर से बचा लिया और उनकी धमकी की वजह से ही वो राजवीर वहां शादी करने के लिए नहीं आया, वरना उन्हें एक पल के लिए इस बात का डर भी था कि कहीं वो सनकी डॉक्टर उनकी बहन से शादी करने के लिए वहां आ जाए और फिर वो नैना को क्या कहकर समझाते। लेकिन अब राजवीर के ना आने की वजह से कहीं ना कहीं सभी ने राहत की सांस ली थी और ठान लिया था कि वे नैना को यहां से कहीं और भेज देंगे। वहीं नैना का दिल इस वक्त पूरी तरह से टुकड़ों में बिखर चुका था। पहली बार उसे किसी से अट्रैक्शन हुआ था, मोहब्बत हुई थी, लेकिन वो उससे दूर जा चुका था। दुल्हन बनी नैना ने खुद को आईने में देखा और अपनी सारी ज्वेलरी, लहंगा सब कुछ उतारकर फेंक दिया और जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर जल्दी से उसके भाई भाभी उसके कमरे में गए और नैना को उसकी भाभी संभालने लगी। उसे शांत करते हुए बोली, तुम्हें इस तरीके से नहीं टूटना चाहिए नैना, तुम्हारे ऊपर हजारों लाखों लोगों की जिम्मेदारी है, तुम इस तरह कैसे रो सकती हो? तुम तो काफी ज्यादा मजबूत लड़की हो, न जाने कितनी चुनौतियों का तुमने अकेले सामना किया है, फिर आज इतनी सी बात को लेकर तुम कैसे हार सकती हो? कहीं ना कहीं अपनी भाभी की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए वो शांत हुई थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा दर्द पैदा हो चुका था। वहीं दूसरी ओर आराम से सोकर उठने के बाद राजवीर जिंदल ने अपने एक्सपेरिमेंट को बड़े ही ध्यान से देखा और फिर बोला, आखिरकार मेरा एक्सपेरिमेंट सफल रहा और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक्सपेरिमेंट मुझे वो दिलवाएगा जो मैं चाहता हूँ। ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में एक खतरनाक सुकून था। इसके बाद उसने तुरंत नैना से मिलने का फैसला किया। वहीं नैना के भाई उसे हमेशा हमेशा के लिए इस शहर से दूर भेजने की तैयारी कर रहे थे। वे समझ चुके थे कि राजवीर जिंदल के पागलपन से अपनी बहन को बचाना आसान नहीं होगा और इस वक्त उनकी पहली प्राथमिकता सिर्फ नैना की सुरक्षा थी। इन 16 घंटों के दौरान नैना ने राजवीर को कई बार कॉल किया, उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन राजवीर ने एक बार भी उससे मुलाकात नहीं की। दूसरी ओर भाइयों ने नैना को समझाया, देखो उसने 16 घंटे से तुमसे कोई संपर्क नहीं किया, जब तुमने उसे साफ साफ कहा था कि तुम कल ही उसे शादी करोगी, तब भी वो आज शादी के दिन यहां तक नहीं आया। तुम्हारे इस तरह इंतजार करने के बावजूद उसने तुम्हारी कोई परवाह नहीं की। हो सकता है कि वो तुम्हारे द्वारा मारे गए थप्पड़ का बदला ले रहा हो। तुम्हें मेरी बात माननी होगी छोटी, और वैसे भी अब इस बात का कोई मतलब नहीं रह गया है। तुम्हें अब पूरी तरह से खुद को संभालना होगा, तुम इस तरह टूट नहीं सकती। इसका मतलब साफ है कि वो तुमसे छुटकारा चाहता है। तुम खुद ही कहती थी ना कि तुम आगे पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहती हो। हमने तुम्हारा पूरा इंतजाम कर दिया है, आज रात ही तुम्हारी फ्लाइट है। नैना ये सब सुनकर चुप हो गई थी। जाने से पहले वो आखिरी बार अपने वृद्धाश्रम और वहां के बच्चों से मिलने गई थी। वो बहुत उदास थी, लेकिन खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, और वैसे भी अब वो अपने भाइयों को दुख नहीं देना चाहती थी। पहली बार उसने जो मांगा था उसके भाइयों ने उसे देने का वादा किया था, इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ राजवीर की थी। सोचा कि जाने से पहले उसे अपने अनाथ आश्रम के बच्चों से मिलना चाहिए, इसीलिए सीधा वो अनाथ आश्रम जा पहुंची थी। इसी बीच राजवीर भी वहां पहुंच गया।
क्योंकि राजवीर को ये पता चल चुका था कि इस वक्त नैना आश्रम में गई है। जैसे ही नैना ने उसे देखा, वो पागलों की तरह दौड़कर उसके पास गई और गुस्से व दर्द में बोली, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुमसे शादी के लिए कहा था और तुम बारात लेकर नहीं आए। मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। तुम्हें मुझे इस तरह धोखा नहीं देना चाहिए था। राजवीर ने तुरंत अपने हाथ में रखी मिठाई आगे बढ़ाई और बोला, मैं जानता हूं कि आपने मेरा बहुत इंतजार किया होगा, लेकिन शादी से पहले हमारे यहाँ एक रिवाज है, अपनी कुलदेवी की पूजा करना। इसलिए मैं कल रात ही गांव चला गया था और पूजा करके ही वापस लौटा हूँ। ये देखिए, ये उसी का प्रसाद है। अब हमारी शादी में कोई विघ्न नहीं आएगा। नैना का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन वो बोली, अगर तुम कहीं जा रहे थे तो कम से कम मुझे बता तो सकते थे। तुम्हें पता है, मेरे भाइयों ने आज रात की मेरी विदेश की टिकट करा दी है। अब मैं क्या करूं? ये सुनकर राजवीर मन ही मन बोला, बस एक बार ये प्रसाद खा लो, फिर तुम्हारी जिंदगी का फैसला सिर्फ मैं करूंगा। बाहर से वो आंसू भरी आंखों के साथ बोला, मेरी जिंदगी में पहली बार कोई लड़की आई है और बिना कुलदेवी के आशीर्वाद के मैं उससे शादी कैसे कर सकता था। अब जब मैंने पूजा कर ली है तो आप इस प्रसाद को खाकर मेरी पूजा को सफल बना दीजिए। राजवीर की बातों में आकर नैना ने बिना ज्यादा सोचे दोनों लड्डू उठाए और जल्दी जल्दी खा लिए। जैसे ही उसने लड्डू खाए, अचानक वो एक पल के लिए पूरी तरह से शांत हो गई। उसकी आंखें खाली सी हो गईं और उसके चेहरे पर अजीब सा भाव जम गया, जैसे उसके साथ कुछ अनहोनी होने वाली हो। तभी राजवीर ने नैना को देखकर बोला था, अच्छा नैना, एक काम करो, अपने मुंह पर खींचकर एक तमाचा मारो। जैसे ही राजवीर ने ये कहा, नैना ने बिना सोचे समझे खींचकर एक जोरदार तमाचा अपने ही मुंह पर दे मारा। ये देखकर राजवीर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, अब एक काम करो, यहां से सीधा घर जाओ। और हाँ, तुम्हें घर किसी सवारी से नहीं जाना है, तुम्हें पैदल ही जाना होगा, समझ गई ना? नैना ने बिना कुछ कहे बस अपनी गर्दन हिला दी और राजवीर के कहने पर पैदल ही माथुर मेंशन के लिए रवाना हो गई। वहीं राजवीर मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी से उसे दूर से फॉलो करने लगा। नैना के घर का रास्ता करीब 8-9 किलोमीटर का था, लेकिन उसे पूरा रास्ता पैदल ही तय करना पड़ रहा था। उधर राजवीर तेजी से गाड़ी चलाकर पहले ही उसके घर पहुंच गया और आराम से बैठ गया।
जैसे ही उसके भाइयों ने राजवीर को वहां देखा, वे गुस्से से भर गए। उन्होंने सोचा था कि वो डरकर भाग जाएगा, लेकिन उसे अपनी आंखों के सामने बैठा देखकर उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वे गुस्से में बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? लगता है तुम्हारा डर खत्म हो गया है। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था राजवीर जिंदल। राजवीर मुस्कुराते हुए सोफे पर टांग रखकर बैठ गया और नैना के लाचार पिता, जो पैरालाइज थे, उनकी ओर देखकर बोला, क्या हुआ? देखिए ना, आपके दामाद के साथ ये लोग कैसा बर्ताव कर रहे हैं। पर हाँ, एक बात साफ कर दूं, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करने वाला, लेकिन उसे हमेशा के लिए अपनी रखेल बनाकर जरूर रखूंगा। इधर नैना लगातार चलते चलते उसकी टांगें जवाब दे चुकी थीं। दर्द के कारण वो रास्ते में एक दो बार गिर भी गई थी, जिससे उसके घुटनों के पास कपड़े तक फट गए थे, लेकिन फिर भी उसने चलना बंद नहीं किया। जैसे ही नैना बदहवास हालत में घर पहुंची, उसके भाइयों, भाभियों और पूरे परिवार ने उसे देखकर हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। वे तुरंत उसके पास दौड़े और उसे संभालने लगे। तभी ड्राइवर भागते हुए आया और बोला, साहब, मैंने मैडम को बहुत समझाया कि गाड़ी में बैठ जाएं, लेकिन आश्रम से यहां तक वो पैदल ही चलकर आई हैं। मुझे समझ नहीं आया कि इन्हें क्या हो गया है। मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट की, लेकिन इन्होंने एक बार भी मेरी बात नहीं मानी। ड्राइवर की बात सुनकर उसके भाई सकते में आ गए। तभी राजवीर मुस्कुराते हुए बोला, अरे डार्लिंग, वहां खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? यहां आओ और आकर अपने इन माँ बाप को, जो व्हील चेयर पर है, उन्हें जरा धक्का दे दो। जैसे ही नैना ने ये सुना, उसने बिना सोचे अपने माँ बाप की व्हील चेयर को धक्का देना शुरू कर दिया। ये दृश्य देखकर उसके भाइयों का खून खौल उठा। उन्होंने गुस्से में कहा, ये क्या है नैना, इसकी बात सुनने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार तो इस पागल डॉक्टर की बात सुनकर अपने पेरेंट्स को कैसे गिरा सकती है? नैना, हुआ क्या है तुझे? संभालो खुद को। तभी राजवीर फिर मुस्कुराया और बोला, अच्छा, अब एक काम करो, अपने भाई को खींचकर एक तमाचा मारो। राजवीर के इतना कहते ही नैना ने तुरंत अपने भाई को एक जोरदार तमाचा मार दिया। ये देखकर सबके होश उड़ गए, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। ड्राइवर ये सब देखकर डर के मारे कांपने लगा। वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर मनोज मेहता था, जो आस्था का मामा था और हाल ही में शहर में काम की तलाश में आया था। फिलहाल वो कुछ दिनों के लिए माथुर परिवार के यहां ड्राइवर का काम कर रहा था। ये सब देखकर वो वहां से भागकर कहीं छुप गया। उधर नैना द्वारा अपने बड़े भाई पर हाथ उठाते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि नैना ऐसा कर सकती है। उसकी भाभी ने गुस्से में कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तभी राजवीर फिर मुस्कुराया और बोला, मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था इसे चुपचाप मेरे साथ जाने देते, लेकिन तुम लोगों ने इसे यहां से दूर भेजने की प्लानिंग करके और मेरी बेइज्जती करके बहुत बड़ी गलती की है, और इस गलती की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। फिर उसने नैना की ओर देखा और ठंडे खतरनाक स्वर में बोला, क्या सोच रही हो? एक काम करो, टेबल पर से चाकू उठाओ और अपने माँ बाप की गर्दन काट दो। आखिरकार क्या रंग लाएगा राजवीर का पागलपन, जानने के लिए बने रहिए दोस्तों और सुनते रहेंगे तेरे इश्क में ओनली ऑन पॉकेट एफएम पर।